صلی علی رسول کریم. اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ سوالات کا سلسلہ میرے خیال ہے آج ختم ہو جانا چاہیے، اس کے بعد پھر دوسرے سوالات کافی جمع ہو گئے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ مرشد صاحب کی توجہ مرید کو مسلسل حاصل ہو رہی ہے. اس میں ایک تو اس کا اکیڈیمک پہلو ہے، لیکن اس کی جو پریکٹیکل سائیڈ ہے جس سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ خواہ ہم ایک لفظ سیکھیں اپنے مرشد صاحب سے، تو بجائے اس کے کہ یہ تلاش کرتے رہیں کہ مزید مرشد صاحب سے سیکھ لیا جائے، اس ایک لفظ کو جو ہم نے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں، ہم پریکٹیکلی اس پر عمل شروع کر دیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بہ نسبت اس کے کہ ہم علم جانتے رہیں. سیکھنا تو اور چیز ہے، اور صورتحال ہماری یہ ہو کہ جس طرح سے نلکا ہے کہ جو اصل سورس ہے وہ ٹیوب ویل ہے، وہاں سے پانی پمپ ان ہو رہا ہے پائپس میں، اور اس کے بعد وہ ہم گھر کا واٹر ٹیپ کھولتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے. اس میں جیسے پائپ اور واٹر ٹیپ، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، پانی آیا ٹیپ کھلا پانی بہ گیا، پائپ پھر خالی کا خالی ہے، واٹر ٹیپ بھی خالی کا خالی ہے. یہ صورتحال نہ ہو ہماری پائپ اور واٹر ٹیپ والی، کہ مرشد تو ہم پر علم کے خزانوں کے منہ کھولے رہے، ہم سنیں واہ واہ کریں اور وہ ہماری زندگی کو متاثر نہ کر پائے، زندگی کا اسلوب نہ بدل سکے، تو پھر ہماری حالت واٹر سپلائی پائپس کسی ہوگی کہ جو ہی پیچھے ٹیوب ویل بند ہوگا 15 منٹ کے اندر اندر تمام پائپس خالی ہو جائیں گے. تو مرشد دنیا سے جائیں گے، ہم خالی ہو جائیں گے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ایک دو لفظ سیکھے اپنے مرشد صاحب سے، ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر لیں. اب بہت سے لوگ یہ دعا کراتے ہوئے ملیں گے کہ صاحب دعا کیجئے میرے بچے عبادت گزار ہو جائیں. بڑی اچھی خواہش ہے، لیکن میرے خیال میں کیا یہ دعا زیادہ بہتر نہیں کہ ہم رب تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے بچے अच्छे मुसलमान हो जाएं, मोमिन हो जाएं। मुर्शिद की मुसलसल तवज्जो क्या करेगी मेरे लिए, मेरे ऊपर तो असर नहीं करती। खाल इतनी मोटी है कि किसी किस्म की तवज्जो उस खाल में से पेनिट्रेट कर ही नहीं पाती। तो बजाय इसके कि मैं ये देखूं कि मेरे मुर्शिद साहब की तवज्जो मुसलसल मुझ पर है या नहीं है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं ये देखूं कि मैं मुर्शिद साहब के पास बैठा हुआ था और उन्होंने ये फरमाया कि तुमने तस्बीह हाथ में क्यों पकड़ी हुई है, तुम लोगों को दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत इबादत गुजार आदमी हो, तुम लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि तुम अल्लाह को बहुत पुकारते हो, तुम नेक आदमी हो ताकि तुम्हें लोग सलाम करें। तो ये जो डांट पड़ी है ये अगर मेरी जिंदगी पर असरअंदाज हो जाए और मैं अपनी इबादात को खुफिया रखने लगूं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? अगर मैं किसी से ये वादा कर लूं कि मैं शाम को आपका ये काम कर दूंगा और वो काम मैं करूं अंधेरा छा जाने के बाद, तो मुझे मुर्शिद साहब से ये डांट पड़ जाए कि ये तुमने क्यों वादा खिलाफी की, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम कर नहीं पाते, तो मैं आगे से ये कहूं कि साहब मैं जो कहा था वो कर तो दिया, अभी कि तुमने शाम कहा था ये रात है अंधेरा हो चुका, तो अगर तुमने रात को आना था यहां 8 बजे तो तुम्हें ये कहना चाहिए था कि रात को जब मैं आऊंगा तो मैं काम कर दूंगा आपका, तुमने शाम क्यों कहा? अब मैंने तो शाम इस किस्से में कह दिया कि गोरा जब तक हम सोते नहीं है वो इवनिंग ही कहता है, तो वो मगरबी तालीम के जेर असर मेरी जुबान से शाम निकल गया। तो अगर मैं उसको उम्र भर के लिए उससे एक सबक सीख लूं कि मुझे अपने अल्फाज में बड़ा मोहतात रहना है कि मेरे जुबान से एक एक लफ्ज जो निकल जाए वो उसको बैन ही वैसा ही पूरा होना है जैसे मैंने कहा है, तो मेरी जिंदगी समझ जाएगी। तो हम ये इन चीजों पर ना पड़े। अब अगर मेरे मुर्शिद मुझसे प्यार करें तो वो मेरे लिए काबिले फख्र बात है। अगर मैं उनके प्यार से फायदा उठाऊं और इल्म सीखता चला जाऊं, उस पर अमल करता चला जाऊं, वरना वो प्यार मेरे लिए काबिले फख्र इसलिए नहीं कि मैं तो चेंज ही ना हुआ, वैसे का वैसा रह गया, तो उल्टा मैं अपने मुर्शिद साहब पर इतराजात के दरवाजे खोल दूंगा कि देखिए ये कैसे मुर्शिद हैं कि सरफराज साहब तो बदले ही नहीं बिल्कुल, वो तो वैसे के वैसे ही हैं। तो मैंने उस प्यार का बदला अच्छा नहीं दिया अपने मुर्शिद साहब को। ये पहलू ऐसे बारीक पहलू हैं जिन पर हम नजर रखें तो हमारी जिंदगी बदलती चली जाती है। तो हम ये तवज्जो न इस पर मरकूज न कर दें कि हमारे मुर्शिद साहब की तवज्जो हम पर मुसलसल है या नहीं है। हमारी तवज्जो इस पर रहनी चाहिए कि जो कुछ मुर्शिद साहब से एक लफ्ज भी हमने सीखा क्या वो जिंदगी में इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे या नहीं हुआ है, वही मुसलसल तवज्जो है मुर्शिद। ये इन्होंने आगे चल के पूछा है कि तसव्वुफ की राह पर चलते चलते कोई राही एक ऐसे फेज से क्यों गुजरता है कि जहां उसे हर तरफ से एहसास दिलाया जाता है कि उससे ज्यादा मैला बेमाया बेवकत और हकीर इंसान रूए जमीन पर कोई नहीं। ये फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एहसास न दिलाया जाए तो जिस तरह हर शख्स के अंदर एक फख्र मौजूद है, हर आदमी अपने तई ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, सब लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। उस चीज को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है कि लोग उसे आईना दिखाना शुरू कर दें, उसको ये एहसास दिलाएं कि वो कुछ नहीं। तो इंसान के दिल से ये बात निकलती कि मैं सब कुछ हूं। अगर मुर्शिद बहुत अच्छे आदमी हैं तो खुद मुर्शिद ही मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ मौकों पर रिपीटेडली ये अपने शागिर्द को एहसास दिलाते हैं, जुबान से कह के नहीं कि तुम बड़े हकीर हो, इसलिए कि वो तो कह नहीं सकते, किसी को मना है, लेकिन वो मुख्तलिफ मेथड से कि लोगों की मौजूदगी में अगर वो मुरीद सही बात भी कह रहा है तो उसे गलत साबित कर देंगे, उसको तोज्जो नहीं देंगे, दूसरों को तोज्जो देंगे। वो दरहकीकत तरबियत हो रही होती है ऐसे आदमी की। तो मुर्शिद यह एहसास दिला दिला के उसके अंदर से वो तफाखर निकाल देते हैं, और इंसान जब अपने आप को छोटा महसूस करता है तो फिर ऊपर उठने की कोशिश करता है। वो उस कोशिश के नतीजे में वो एक बड़ा आदमी बन जाता है। तो ये बड़ा अहम है कि इंसान के दिल पर कचोके लगते रहें, इंसान के का दिल जख्मी होता रहे, और वो जख्म जितने गहरे होंगे और इंसान जितनी खामोशी से उन जख्मों को सहेगा, बर्दाश्त करेगा, उतनी ही तेजी से वो तरक्की करता है इस राह में। तो ये तो बड़ी मुबारक चीज है कि लोग इंसान को ये एहसास दिलाने लगें कि वो कुछ नहीं। ये जितने भी औलिया इकराम गुजरे हैं, आप इनकी अगर स्टडी करें तो वो औलिया इकराम जिन जो अज़दवाजी जिंदगी गुजारते रहे हैं इस मकाम पर पहुंचने के बावजूद, उन सब की जो लाइफ पार्टनर्स हैं वो बड़ी तुंदखो, बहुत ही जुबान की सख्त और ताने देने वाली उनकी लाइफ पार्टनर्स मिलेंगी आपको। उनका वो अज़दवाजी पहलू बड़ा दर्दनाक होता है। उसकी वजह यह है कि वहां से जो कचोके लगते हैं वो ज्यादा दर्द करते हैं कि मुसलसल होते ही रहते हैं, और इन औलिया इकराम को कभी देखें तो आदमी को हैरत होती है कि वो अपनी लाइफ पार्टनर की किसी किस्म के सलूक के जवाब में भी वो तल्ख नहीं होते। हंस खेल के वक्त गुजार जाते हैं। ये है कि कभी इंसान अल्लाह के क़ुर्ब की तलाश में हर नेक और अल्लाह वाले इंसान से करीब होने की कोशिश करता है, तो कभी उसे अपने अंदर से इतनी बुआ आती है कि वो नेक लोगों से करीब होने की कोशिश करे तो अंदर सोच मच जाता है कि कौवा हंसों के में घुसने की कोशिश कर रहा है। जैसे कमरे की स्मेल को हम एयर फ्रेशनर स्प्रे करके उस स्मेल को भगाते हैं, अपने कपड़ों पर हम खुशबू का इस्तेमाल करते हैं कि हमसे बैड स्मेल ना आए। इसी तरह जो अंदर की मैल है हमारी, वो खत्म हो ही नहीं सकती तब वक्त के हम नेक और अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार न कर लें। औलिया अकराम की सोबत के बारे में जो मुख्तलिफ चीजें महावरतन मशहूर हैं, उसकी वजह यही है कि इंसान जब इन लोगों के करीब जाके बैठता है तो उसको अपना आप बड़ा छोटा लगता है। और ये इंसानी फितरत में है कि अगर इंसान को यह एहसास हो जाए कि मैं बहुत छोटा हूं तो अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश शुरू कर देता है वो। तो इन लोगों के पास जाके हम जब गुनाहगार लोग बैठते हैं तो उस वक्त हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे लोग हैं। तो एक अंदर से ख्वाहिश पैदा होती है, एक अर्ज होती है कि हम इनकी तरह के हो जाएं, तो हम एफर्ट करने लगते हैं कि उन जैसे हो जाएं। इसलिए ये सोबत इख्तियार करने का की तलकीन करते हैं सभी लोग। हम अंदर से चाहे मैले हों या ना हों, लेकिन इन लोगों के पास अगर जाके हम बैठे इनकी सोबत इख्तियार करें तो उसका बड़ा पॉजिटिव असर आएगा कि खुद हमारी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाएगी। ये अगला सवाल तो गालिबन रिपीट हुआ है कि मुर्शिद की बेइंतहा मोहब्बत, कोशिश और तरबियत के बावजूद अगर मुरीद अपने आप को बेहतर न कर पा रहा हो, मुर्शिद साहब के मायार पर पूरा न उतरता हो लेकिन पूरा उतरना चाहता है, तो वो कुन ज़हन सुस्त और नालायक मुरीद क्या करे? बड़ी सिंपल चीज है। तो अपने एफर्ट को तेज कर ले। अगर ख्वाहिश है कि वो वाकईतन अच्छा हो जाए तो फिर बजाय मुर्शिद को इल्जाम देने के कि वो कुछ हमें सिखा नहीं सके, हमें यहां से कुछ मिला नहीं, हमने कुछ पाया नहीं, तो अपने आप को इल्जाम देना चाहिए कि हम कुछ ले ना सके वहां से। वो तो एक दरिया है इल्म का जो बह रहा है। तो दरिया कभी आपके पास पानी आपको देने नहीं आएगा, ये तो आपको चल के दरिया के किनारे जाके उसमें से पानी हासिल करना होगा। मुर्शिद को इल्जाम मत दीजिए कि मैं कुछ यहां से ले ना सका, मुझे कुछ मिला नहीं। अपने आप को इल्जाम दीजिए कि मैं कुछ ले ना सका। एफर्ट तेज कर दे। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये इस सवाल से मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है कि हमारा जो अपने बारे में, खुद अपनी ही जात के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मैं अगर किसी वली अल्लाह के पास जाके बैठता हूं तो जुबान से मैं जो चाहे जो जी चाहे कहता रहूं कि मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मेरा ध्यान दुनिया की तरफ बिल्कुल नहीं है, मुझे कशफ करामात नहीं चाहिए, लेकिन दरहकीकत वो सिर्फ जुबानी कलामी कह रहा हूं मैं। एट द बैक ऑफ माई माइंड अगर दुनिया का ख्याल नहीं भी है तो भी ये है कि वो मैं कब उस मकाम पे पहुंचूंगा कि जैसे दाता साहब ने उस हिंदू साधु के जूतों से खुद उसे ही मार पड़वा दी थी, उस मकाम पे कब तक मैं जाऊंगा। और अगर मैं अपने आप को कुरेदूं, अपने जहन को कुरेदूं, तो गहराई में डीप डाउन जो मेरा मकसद होगा वो ये होगा कि लोग वाह वाह करें देख के, वाह क्या ये पहुंचा हुआ इंसान है। तो ये दिखावा आ गया, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं पूरे अखलास के साथ ये चाहूं कि मैं एक अच्छा मुसलमान बन जाऊं, कि रब मुझे अपना दोस्त बना ले, तो मैं सब कुछ सीख जाऊं। उर्स वाले दिन जो मैं एक अर्ज कर रहा था कि जब कोई मुरीद किसी मुर्शिद के पास जाके बैठते हैं तो वो मुर्शिद अपने मुरीद के इर्द गिर्द एक हसार खींच देता है, उसको एक कलम में बंद करता है और वो जो हसार है वो चार दीवारों पर मबनी होता है। भूख है ये एक दीवार है, बेदारी है वो दूसरी दीवार है, तीसरी तरफ दीवार खड़ी करता है वो तन्हाई की। चौथी दीवार वो खड़ी कर देता है सुकूत की। इंसान के नफ्स को मारने के लिए भूख से ज्यादा बेहतर इलाज कोई नहीं है कि मेरा नफ्स अगर मैं उसे ठिकाने रखना चाहता हूं। इसीलिए रोजे को इतनी अहमियत है कि दुनिया के हर मजहब में, और कमाल यह है कि वो मजहब जो मैन मेड हैं, जो इंसान ने ईजाद किए हैं, उन मजहब में भी रोजे की इबादत मौजूद है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नफ्स को कुचलने का बेहतरीन जरिया भूख है। کو مرشد اپنے مرید کو سادہ کھانا اور کم سے کم مقدار میں کھانا اس کی طرف لگا دیتا ہے تاکہ اس کا نفس کچلا جائے, کہ نفس کی خواہشات ختم ہوتی ہیں. یہاں کسی زمانے میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک عرض کی تھی کہ شیطان دو طرح کا ہے, ایک جو بیرونی ہے اور جو ایک انسان کے اندر ہے. اور وہ انسان کے اندر کا جو شیطان ہے وہ خون کے ساتھ مل کر اس کی رگوں میں بہتا ہے, اور نفس اس کا منبع ہے. تو بھوک نفس کو مارے گی, ہماری نفسانی خواہشات کم ہوں گی. تو یوں یہ بھوک حصار کے ایک دیوار کا کام کرتی ہے. اسی طرح بیداری انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے, کہ اگر انسان شب بیدار ہے, جیسے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا, بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, فرمایا نہیں تھا, میں غلط کہہ گیا, کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کبھی رات کے وقت اپنی پشت بستر سے نہیں لگائی, شب بیدار تھے. تو وہ نیند کم سے کم کراتا ہے اپنی مرید کی. ایک چیز جو ہمیں سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے وہ ہے حرص کلام. امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب نے جو یہ فرمایا تھا کہ اپنے دل سے 10 آلائشوں کو نکال دو, تو ان میں ایک آلائش حرص کلام تھی, گفتگو کرنے کی حرص. جب لوگوں سے انسان ملتا ہے تو گفتگو میں مصروف رہتا ہے. جب گفتگو میں لوگوں کے ساتھ مصروف رہتا ہے تو اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگتا ہے, اور انسان غور و فکر سے دور ہوتا ہے. تصوف کے اندر غور و فکر کو بڑی اہمیت ہے. انسان کا علم آگے بڑھتا ہی غور و فکر کے ذریعے سے ہے. تو جتنی انسان کو تنہائی میسر ہوگی وہ اتنا ہی غور و فکر میں مبتلا رہے گا. تو مرشد انسان کو تنہائی کی طرف لے جاتے کی کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم لوگوں کے ساتھ ملے. اور چوتھی دیوار ہے سکوت کی. کہ انسان جب خاموش بیٹھتا ہے تو پھر اس کا دل ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے, اس کا دھیان اپنے رب کی طرف لگا رہتا ہے. تو جب یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بڑی تیزی سے سفر طے کرتا ہے. تو مختصر الفاظ میں ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فقیر کھانا اس وقت کھاتا ہے جب اس پر کمزوری کا غلبہ ہوتا ہے. بھوک کے مارے کمزوری کا غلبہ ہونے لگے تو وہ پھر کھانا کھاتا ہے. فقیر سوتا اس وقت ہے جب اس پر نیند غالب آ جائے. मिलता लोगों से सिर्फ उस सूरत में जब वो इंतहाई जरूरी हो जाए। और कलाम सिर्फ उस सूरत में करता है जब असल जरूरत हो। तो अगर हम अल्लाह की राह पे चलना चाहते हैं तो फिर सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि मैं अपने मुर्शिद साहब के पास जाके बैठ जाऊं और उनकी बातें सुन के वाह वाह करके सुभान अल्लाह जजाक अल्लाह माशाल्लाह कह के उठाऊं और दोबारा अपने कामों में उसी तरह लग जाऊं। बल्कि उसके लिए जरूरी है कि जब मैं अपने मुर्शिद साहब के पास जाता हूं तो जो एक लफ्ज सीखा उसको मैं अपनी जिंदगी पर इंप्लीमेंट कर दूं। बड़ी तेजी से इस राह पे चल निकलूंगा मैं। इनका एक सवाल है कि अगर किसी वलीअल्लाह के शेख चिश्ती साबरी वारसी हूं और उनके खलीफा के पास काजी और जुनैदिया सिलसिले की भी खिलाफत हो तो क्या वलीअल्लाह अपने आप को चिश्ती साबरी वारसी काजी जुनैदी कह सकता है? भाई सिलसिले चाहे कोई भी क्यों ना हो, सब एक ही जगह जाके मिलते हैं। सबका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि हमें रब मिल जाए। लिखने लिखाने से मेरे नजदीक, मैं तो जो खुद समझता हूं वो अर्ज कर रहा हूं कि अगर मैं अपने नाम के साथ किसी एक सिलसिले का नाम लगाता हूं तो मेरे नाम के साथ वो सिलसिले का रेफरेंस लगे हुए देख के लोगों की तवक्कुआत मेरे साथ वाबस्ता जो होंगी वो बहुत बड़ी हो जाएंगी। जिन दिनों मैं कराची ऑफिस में बैठ रहा था तो कुछ सरकारी मुलाजमीन ने मिलके उस हमारे ग्रुप के साथ कुछ जरा ज्यादती कर दी, तो हमारे जो अफसर डील कर रहे थे वो एक साहब से मिले तो वो एक बहुत बड़ी दरगाह के गद्दी नशीन थे और उनके नाम के साथ पीर भी लगा हुआ था और उस सिलसिले का रेफरेंस भी था। तो इन साहब ने मासूमियत से अनजाने में उनको एक बात कह दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये काम मैं ठीक है जानबूझ के खराब किया तुम, मगर बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने के हिसाब से कि अगर 50 लाख रुपए दे दो तो मैं इसे दुरुस्त कर दूंगा। अब इन साहब ने अपनी मासूमियत में कोई तंज या उनको शर्मिंदा करना मकसद नहीं था, सिर्फ मासूमियत से कहा कि हजूर आप तो गद्दी नशीन हैं तो आप भी 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया क्यों, क्या गद्दी नशीनों के पेट नहीं होते? अब इन्होंने आके मुझे बताया तो मैंने उनसे, उनका ये ख्याल था कि मैं कुछ और कहूंगा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि बेग साहब आपको ये नहीं कहना चाहिए था। कहने लगे लीजिए साहब, वो फलां सिलसिले से ताल्लुक है उनका और गद्दी नशीन है, पीर साहब साथ लगा है। ये तो उनकी बेग साहब की सिर्फ उनके नाम के साथ पीर और गद्दी नशीनी का सिलसिला देख के उनकी तवक्को बढ़ गई। अगर ये ना लगा होता तो शायद बेग साहब उनको ये बात ना कहते कभी। तो अगर मैं अपने नाम के साथ लगा लेता हूं ऐसा कोई सिलसिला तो लोगों की तवक्कोआत मुझसे बढ़ जाएंगी। वो ये समझने लगेंगे कि नाम के साथ चूंकि ये सिलसिले का एक हवाला है तो सरफराज साहब कोई नेक आदमी है। तो जब मायूसी होगी उनको, उनको मुझे देख के, तो मुझे तो शायद बुरा भला जो कहें सो कहें, लेकिन उस सिलसिले के बारे में ख्यालात उनके, तो अगर मुझे अपने नाम के साथ लगाना ही है कुछ तो मैं तो अल्लाह से एक दुआ करूंगा कि या परवरदिगार मुझे इतना अच्छा बना दे कि मैं अपने नाम के साथ मुस्तफ़ी लगवा लूं। तो फिर वो हवाला मेरे लिए काबिले फख्र है। तो इन सिलसिलों से हम, मेरा ख्याल है ये रेफरेंस नाम के साथ लगाने से उस वक्त तक इज्तनाब करें जब तक कि हम इस मयार पर न चले जाएं कि जो लोगों की तवक्कोआत हमसे वाबस्ता हो जाएंगी ये रेफरेंस लगाने से, हम वहां तक नेक ना हो जाएं। ये इनका सवाल है कि मज़ारात पर सिर्फ कबूतर ही क्यों होते हैं, दीगर परिंदे क्यों नहीं होते? एक तो बड़ा सीधा उसका दुनियावी अलूम से मुतालिक के जरिए से जवाब है कि परिंदों में सिर्फ कबूतर ही ऐसे हैं जो ऐसी बिल्डिंग्स पर बसेरा करते हैं जहां कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, और उसके साथ ही साथ वो लोगों की मौजूदगी भी बर्दाश्त कर जाते हैं और दूसरे परिंदे ऐसा नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि चूंकि कबूतर सब परिंदों में से ज्यादा मासूम है और मासूमियत रब ताला को बड़ी पसंद है, तो ये ऐसी तमाम जगहों पर बसेरा करते हैं जहां अल्लाह का जिक्र होता है। दो चीजें उसमें इतनी बड़ी, क्योंकि मज़ारात पे लोग आते हैं खाने की चीजें चावल वगैरह वहां फेंकते हैं, दूसरी और चीजें खुद दाना भी डाल देते हैं परिंदों के लिए, तो कबूतरों को खाने का, खाने को पीने को वहीं मिल जाता है, और फिर मुख्तलिफ रोशनदान और मुख्तलिफ मंडेरे उनमें वो बसेरा कर लेते हैं आराम से। लोग ऐसी जगहों पे आते हैं, मुअद्दब होते हैं, परिंदों को तंग नहीं करते, तो यूं वहां उनकी अफजाइश होती जाती है, तादाद बढ़ती जाती है। तो ऐसी चीजों से हम शगुन न लें तो बेहतर है। मुसलमान तो बड़ी सीधी जिंदगी गुजारता है, वो ऐसे शगुन और इस किस्म की चीजें उनसे दूर रहता है। क्या ये मुमकिन है कि एक रूह किसी खानका से वाबस्ती की वजह से खानका के बुजुर्ग से इजाजत ले ले कि वफात के बाद कबूतर की शक्ल में उसको खानका पर रहने दिया जाए? अब ये रीइंकारनेशन का कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में तो बिल्कुल सीधा मामला है कि रब ताला ने रूहें बनाई, उनको नूर से गुस्ल दिया और उस मकाम पर उस रूह को दीपाइस सोल कहा गया। उसके बाद उनको तीसरे आसमान पर रूहों को उतारा गया, वहां फिर नूर में गुस्ल दे के तो वहां उसका नाम मूविंग सोल आ गया। उसके बाद आलमे अरवा में भेज दिया गया उन्हें। अब जब किसी रूह से मुतालिक जिस्म दुनिया में वजूद में आता है तो फरिश्ता उस रूह को उस जिस्म के दिल के दरमियानी हिस्से में, जो बहुत ही छोटा सा एक वाइड है, वहां दाखिल कर देता है। वो इंसान अपना वक्त जो उसका मुकर्रर है रब ताला ने किया है वो दुनिया में पूरा करता है और उसके बाद रूह आलम बरज़ख की तरफ रवाना हो जाती है और वो वहां मौजूद रहेगी जब तक के यौम हिसाब नहीं आता। तो यौम हिसाब फिर अमाल पर मबनी फैसले हो जाएंगे। ये टोटल लाइफ साइकिल है इस्लाम के कॉन्सेप्ट में। ये हिंदू हैं जो रीइंकारनेशन पर, दूसरे जन्म पर बिलीव करते हैं। इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से झटक देना चाहिए। इनके सिर्फ तीन सवाल बाकी रह गए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी जवाब दे दूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।